शांति। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी तपस्या मास कहो, अव्यक्त मास कहो, वरदानी मास कहो, प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने मधुबन प्यारे बाबा के घर में सब पहुंचे हैं। तपस्या मास, अव्यक्त मास हमें बाप समान बनने की प्रेरणा देता, विशेष इस मास में साकार प्यारे ब्रह्मा बाबा की यादों में सब समाये रहते कि कैसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, कर्मातीत बन गए। शिव बाबा भी हमेशा हम बच्चों को सी फादर फॉलो फादर का ही कहते कि संपन्न संपूर्ण बनना है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया, वही बाबा हम बच्चों को भी करने की प्रेरणा देते। और हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा का सारा जीवन ही क्या, सारा जीवन ही तपस्या था। उठते बैठते, कार्य व्यवहार करते, कारोबार करते, जो बाबा कहते इतना बड़ा कारोबार कि बाबा कई बार मुरलियों में भी आता कि जितना बछड़े वाला ब्रह्मा बाबा उतना तो कोई भी नहीं, जितने मामले ब्रह्मा बाबा के सिर पर मत्थे पर उतने तो किसके भी नहीं, पर फिर भी सब कुछ करते बाबा को सदा अपना लक्ष्य स्मृति में रहा, कभी भूला नहीं। आज हम साकार ब्रह्मा बाबा के विभिन्न पोज देखते हैं, विभिन्न फोटोग्राफ्स देखते, विभिन्न मुद्राएं देखते बाबा की, पर वह देखते हुए भी एक ही भासना आती, एक ही अनुभव होता कि जैसे ब्रह्मा बाबा का सारा जीवन ही तपस्या युक्त रहा, तपस्वी बन करके ही बाबा ने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। तो हम बच्चे, बाबा ने हमारे सामने भी आज यही लक्ष्य रखा हुआ है कि आप ब्राह्मण सो देवता बनने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, किंतु एकदम से हम छलांग नहीं लगाएंगे कि ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे। जो बीच में भी एक मुरली चली बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा एकदम से तो थोड़ी तुम छलांग लगाओगे कि डायरेक्ट शूद्र से देवता बन जाओगे, नहीं, शूद्र से पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। कलयुग से हम एकदम से छलांग सतयुग में नहीं लगाएंगे, पर बीच में यह छोटा सा संगम युग जिसमें हमें श्रेष्ठ लायक योग्य संपन्न संपूर्ण बनना होता, ऐसे ही ब्राह्मण सो देवता बनना है। पर पहले हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना पड़ेगा, फरिश्ता बन करके ही फिर हम सो देवता बनेंगे। और फरिश्ता कहाँ बनना है? फरिश्ता बनना है अभी इस संगम युग पर। यहाँ पर सब कारोबार करते, बाबा ने कुछ भी हमें छोड़ने के लिए नहीं कहा है। सब कुछ करते हुए भी बाबा कहते तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जो है वह स्मृति में रहना चाहिए कि मैं आत्मा बाबा की बनी हूँ, बाबा की बनी हूँ, बाबा ने मुझे अपना बनाया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या बनना है। बाबा हमें बनाने आया है और बना करके ले चलने के लिए आया है और चलना है। बाबा मुरलियों में रोज कहते, प्रायः हमेशा ही कहते कि तुम सब स्वर्ग चलने की तैयारी कर रहे हो, तुम घर चलने की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हारे को लायक बना रहा हूँ। तो अपने आप से पूछना है कि वास्तव में बाबा तो कह रहा तैयारी कर रहे हो, किंतु मैं वास्तव में तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी चल रही है, कहाँ तक तैयारी में अभी कमी है, कितनी तैयारी करनी बची हुई है, ये अपने आप से पूछना होता। आज देखो सबको मधुबन आना है प्यारे बाबा से मिलने के लिए, सबको पता है 18 जनवरी को बाबा से मिलने जाना है, तो तैयारी पहले से शुरू की कि बस आज निकलना है तो आज ही बस उठ के चल पड़े? कितना समय पहले से जाना है, जाना है, जाना है, अंदर में रट धुन थी कि नहीं थी? सब कहते जाना है, जाना है, जाना है, सबसे पहले तो अपनी टिकट ही बुक कराई, फिर उसके बाद में जाना है, चलो कितना उमंग रहता है, ये तैयारी कर लो, ये कर लो, वहां पर जाकर के फिर मधुबन में पहुंच के परेशानी ना हो कि ये नहीं वो नहीं, रास्ते में कितनी तैयारियां हमने कितना समय पहले से ही करना शुरू कर देते और फिर मधुबन में पहुंच जाते। तो आज वो एक स्थूल तैयारी में मधुबन जाने तो सब प्रकार की तैयारी करनी, और यहाँ बाबा कह रहे कि तुम्हें तैयारी करनी है, तुम तैयार हो रहे हो। तो अपने आप से ही पूछना है, अपने आप की खुद जांच करनी है कि बाबा तो कह रहा तैयारी करनी है, तैयार हो रहे हो, अब घर चलना है, किंतु मैं वाकई में तैयार हूँ, मेरी तैयारी चल रही है, या मैं इस भरोसे हूँ, यह सोच कर बैठा हूँ कि टाइम आएगा, समय आएगा तो हो जाऊंगा तैयार। अभी से क्यों इतनी जल्दी मचाऊं, क्यों इतनी हड़बड़ी मचाऊं, ये संस्कार तो मेरा नहीं है। क्योंकि होता ना कई बार कि क्या इतनी जल्दी मचानी, कर लेंगे ना, क्या टाइम लगता है तैयार होने में। चलो वो तैयारी करने में कहीं जाना है कोई टाइम नहीं लगता, परंतु जो बाबा हमें कह रहा है तैयार होना है, तैयारी करनी है, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। इसके लिए हमारे को बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत काल की हमारी जो मेहनत होगी वही अंत समय में काम आएगी। और इसके लिए ही बाबा हम बच्चों को कौन से तीन शब्द हमेशा याद रखने के लिए कहते, जो सभी बाबा के बच्चों को याद होंगे, पक्के रहने चाहिए। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास। और अचानक के किस्से, अचानक का तो हम सब अभी वर्तमान समय बहुत देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अचानक, जो ना मन ना चित, जो बात ना ख्याल ना ख्वाब में, और एकदम से हमारे सामने आ जा रही है, आ जाती है। और उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए भी बहुत काल का हमारा अभ्यास नहीं है। तो बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो एकदम से सामना करने की शक्ति, उस पेपर के सामना करने की शक्ति ना होने के कारण, सहन शक्ति ना होने के कारण हम फेल हो जाते हैं। जो आज के समय में बहुत सुनने को मिल रहा, बहुत समाचार आते कि एकदम से अचानक का पेपर आया, एकदम से और सहन नहीं कर सके, सामना नहीं कर सके, तो या तो डिप्रेशन में आ गए, या एकदम से उदास, मायूस की ज्ञान योग सब कुछ एक किनारे रह गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये पक्का करा रहे, कौन सी बात, कि बच्चे सदा तैयार रहो। कब भी, कुछ भी, किसी भी घड़ी क्या भी हो सकता है, पर आप हर प्रकार का पेपर देने के लिए, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए, चाहे तन की, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे संबंधों का ही क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का पेपर, परिस्थिति, समस्या, वार, परंतु हम उसमें पास हो सके। और उसके लिए हमारे को बहुत काल का अभ्यास करना जरूरी है। और बहुत काल के अभ्यास के लिए ही अभी भी देखो, जो बाबा का, मीठे बाबा का आना होता, पदरामणि होती, बाबा की मुरली चलती, तो जो पुराने भाई बहन हैं कहते, वो मुरलियां जो पहले बाबा की चलती थी, अब बाबा की मुरलियां वो नहीं चलती। बाबा अभी एक ही पाठ पक्का कराते, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, क्योंकि बाबा को जो कुछ कहना था, जो बाबा को बच्चों को मजबूत बनाने के लिए जिन बातों की शिक्षाएं, सावधानियां देनी थी, वो तो बाबा ने पहले, अव्यक्त बाप दादा ने भी सब कुछ पहले से ही सुना दिया। और अब आज की तारीख में बाबा वो सब क्या सुनाए, ये तो अपने आप को देखना है कि जो बाबा ने कहा है, आज भी जब हम रिवाइज कोर्स की संडे की मुरली सुनते हैं तो लगता है आज की तारीख में बाबा आज मेरे लिए ये कह रहा है, मेरे लिए ही ये मुरली है जो मुझे उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसलिए अभी मीठा बाबा आता तो बाबा एक ही बार बार मेरा बाबा बोलो, दिल से कहो मेरा बाबा है, वाह बाबा है, बाबा कराते कि कई बार साधारण रीति से अपन लेते साधारण रीति से कई ले लेते तो हंसते, वाह बाबा बार बार मेरा बाबा मीठा बाबा कह रहा। किंतु अगर अपने दिल में झांक कर, अपने दिल में उतर कर अपने आप से पूछे, इतना मेरा बाबा पाठ मेरे को पक्का हुआ है, मीठा बाबा वाह बाबा शुक्रिया बाबा, इतना मेरे को पाठ पक्का हुआ है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी घड़ी आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, एकदम से अचानक भी मेरी नींद खुले, चाहे रात को एकदम से नींद खुले या कुछ भी हो, तो अंदर दिल से निकले ओहो मेरा बाबा मीठा बाबा। मुंह से यहाँ से कहना तो बड़ा सरल है कि सब एक धुन में एक सुर में बहुत अच्छा कह देंगे, और कहते भी रहते हैं बाबा चलो बाबा करो बाबा आओ बाबा, कहते भी रहते हैं करते भी रहते हैं, बहुत अच्छा है। पर जो बाबा हम बच्चों को अभी पाठ पक्का कराते, बोलो दिल में कौन मेरा बाबा, मुंह से बोलो मेरा बाबा, तो इतना दिल में जिगर से इतना बाबा समाया हुआ है कि कोई भी घड़ी आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक बाबा के अलावा मेरा मन बुद्धि कहीं भी ना जाए, हाय ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो शायद ऐसा नहीं होता, अनेक प्रकार के संशय के ही कह दो संकल्प, क्योंकि बाबा कहते क्यों क्या कैसे कब आना, अर्थात कि अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रति ही डाउट हो गया है। और बाबा ने हम बच्चों को निश्चय में कहा है कि बाबा के प्रति भी निश्चय, तो ड्रामा पर भी निश्चय, तो स्व पर भी निश्चय, हर बात में निश्चय। तो इसलिए इतना मेरे को अंदर में पक्का है कि वाह बाबा वाह, मीठा बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार अभी यही शब्द कि चलो और कुछ ना पक्का हो, आज बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, चलो बहुत ज्यादा कारोबार है और कुछ नहीं याद रहता, पर सिंपल सरल ये शब्द तो याद भी रह सकता और पक्का भी हो सकता कि मेरा बाबा मीठा बाबा कि उठते बैठते चलो हम कहें शुक्रिया बाबा। और हम बच्चों की जो तपस्या है वो तपस्या कौन सी है, हमारी कोई पत्थर की, बाबा ने कोई वो हमें तपस्या करना नहीं सिखलाया कि पत्थर की गुफा में, कोई वैसी गुफा में बैठ जाओ और पैर पे पैर चढ़ा करके तपस्या करो साधना करो। बाबा हमारी तपस्या कौन सी है, प्यार की गुफा में बैठ करके तपस्या साधना करना कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हमारी तपस्या क्या है, यही है कि बस मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई और कहीं एक बाबा के सिवाय, एक बाबा के अलावा कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, एक बाबा के अलावा और कहीं मेरी और किसी में मेरी आंख ना डूबे और किसी में मेरी मन बुद्धि ना जाए। कुछ भी होता है, क्या भी होता है, सबसे पहले बाबा। बाबा ये नहीं कि अरे बाबा तो है पर वो होता तो फिर भी मदद तो मिल जाती, ये तो हो जाता, वो नहीं। मेरा बाबा, बाबा बैठा है, मेरा बाबा है, बाबा सब कुछ करेगा, बाबा आपे करेगा। इतना मेरी अंदर में साधना तपस्या इतनी पक्की है कि एक बाबा दूसरा ना कोई। आज देखो पार्वती ने, कहते पार्वती ने शिव की लिए तपस्या की थी ना, साधना की थी। तो आज हम सब कौन है? शिव की सच्ची पार्वतियां हैं, और हम सब पार्वतियों को भी इतना एक व्रता का पाठ पक्का होना चाहिए कि बस एक बाबा, दूसरे तीसरे का बाबा ने पाठ पक्का कराया ही नहीं है, बस एक बाबा, एक बाबा के प्रति ही हमारे मन की मन बुद्धि का झुकाव कहाँ रहे। एक बाबा, बस एक व्रता, जितना हम एक व्रता होकर के रहते हैं उतना बाबा के साथ का, बाबा की समीपता का, बाबा के सहयोग का अनुभव होता है। कल भी देखो बाबा की मुरली सुनी, कल की परसों का मुरली में वरदान था कि बड़ा बाबा बैठा है। वरदान में था ना कि बड़ा बाबा बैठा है, बस ये स्मृति हमें बेफिक्र बादशाह बना देती है। क्या देखो घर में सब अपने चित्र लगाकर, बाबा का फोटो लगाकर रखते हैं कि बच्चे चिंता मत करो मैं हूं ना। सबको अच्छा लगता है ये चित्र, लगता कि नहीं अच्छा चित्र? बस मैं हूं ना, ये चित्र फोटो लगा करके रखेंगे। कल बाबा ने कहा परसों वरदान में बड़ा बाबा बैठा है, बस ये स्मृति ही बेफिक्र बादशाह, बड़ा बादशाह बना देती है। तो आज विचार करने की जरूरत, आज अपने आप से कि आज हम बाबा के बच्चे कितने ना भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य की कितनी ना सराहना करें, अपने भाग्य के कितने ना गुण गाएं कि आज दुनिया में लोग डर में भय में जी रहे हैं। सब आज भले बड़ा करोड़पति भी क्यों ना हो, कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, साधारण गरीब की तो बात ही नहीं है, परंतु हर एक डर भय में जी रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज हम बाबा के बच्चे, बाबा ने हम बच्चों को कितना नहीं निश्चिंत बना दिया, बेफिक्र बना दिया, बाबा की मुरली सुनते, आज संसार समाचार भी सुनते तो अंदर में लगता बाबा ने तो, हमारे बाबा ने तो ऐसा कहा ही था, हमारे बाबा ने तो पहले से ही ऐसा कहा था कि ये सब होना ही है। हम सब, आज हम सब को कितना बड़ा सहारा, कितना बड़ा एक कहो सपोर्ट, कितना कि हमारा बाबा बैठा है, सब अच्छा होगा, सब कल्याण होगा, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता है, हमारी विजय तो निश्चित हो ही पड़ी है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज सोचो हम सबको कितना बल है कि नहीं बल? सबको अंदर में है कि नहीं हमारा बाबा बैठा है ना, हमारा बड़ा बाबा बैठा है, हजार भुजाओं वाला मेरा बाबा मेरे साथ है, किस बात की मैं क्यों डरूं, मैं क्यों सोचूं। आज देखो अमृत वेले हम सब बाबा से मिलन मनाते, अपने ऊपर में क्या अनुभव करते कि बाबा के दुआओं भरा हाथ मेरे सिर पर है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं बाबा की छत्र छाया में चल रही हूँ, बाबा की छत्र छाया में चल रहा हूँ। देखो अब छत्र छाया से बाहर निकल जाए तो ये मेरी गलती है, मेरी कमजोरी है, नहीं तो बाबा तो क्या कहता, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, मैं तुम्हारा सदा साथी हूँ। बाबा तो क्या कहते, साथी मत रखो, साथी बना करके हर कर्म करो। साथी बना करके हर कर्म करोगे तो क्या होगा कि जो काम है वो भी क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। देखो भक्ति में तो हम सबने क्या गीत गाए, भक्ति में सबने गीत गाए, कौन से कि मेरे अवगुण हमारे अवगुण चेतना धरो प्रभु जी। और अभी बाबा हम बच्चों को क्या कहता, अब हम थोड़ी कहते कि बाबा तो कहता मैं तो तुम्हारे अवगुण चित्त में रखता ही नहीं हूँ। अगर बाबा चित्त में रखे हमारी कमियां कमजोरियां अवगुण, तो बाबा तो इतना हमारे को उमंग उत्साह में ला करके हमारी सर्व कमजोरियां खत्म हो जाए, वो बाबा मुरली ना चला सके। बल्कि बाबा तो हम बच्चों को क्या कहते कि अपने बोझ जो है वो तुम अपने सिर पर मत रखो, जो तुम्हारी कमियां कमजोरियां हैं उसको तुम अपने चित्त पर ना रखो, क्योंकि नहीं तो हम अपनी कमियों कमजोरियों को ही सोचते रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। यहाँ बल्कि बाबा हम बच्चों को कहता कि बच्चे जो हुआ सो हुआ, बीती सो बीती करो, अब बल्कि तुम अपने अवगुणों कमियों को अपने चित्त पर नहीं रखो, बल्कि और आगे बढ़ने का कितना ऊंचा बाबा ने हमारे को लक्ष्य दिया कि ये लक्ष्य सामने रखो और यह पक्का करो कि ये हम ही थे और हमें ऐसा बनना है। यहाँ बाबा तो हमें क्या कहते कि तुम अपना बोझ अपने सिर पर ना रखो, तुम अपने बोझ को चित्त में ना रखो, नहीं तो हम अपने बोझ जिम्मेदारियों को भी बहुत चित्त में दिमाग में स्मृति में रखते हैं, मुझे ये करना है मुझे ये करना है, अभी मैं ये काम छोड़ करके आया हूँ, जाते से मेरे को ये करना पड़ेगा, कितनी बातें यहाँ भी आए हैं तो भी शायद कई बातें कि अरे बस ये छोड़ के आए हैं, बस बाबा से मिलन मना के जाएंगे फिर इसमें लगना है। बाबा कहते वो तो लगोगे ही सही, करोगे ही सही, परंतु उसका बोझ उसकी स्मृति लेकर के सारा समय दिमाग में मत रखो, जो कि योग ही बाबा से टूट जाए। यहाँ तो बाबा क्या कहते कि सारा बोझ जो है वो तुम क्या करो, मेरे को दे दो, सारी जिम्मेवारियां मेरे को दे दो और तुम हल्के होकर के उड़ो भी सही और उड़ाओ भी सही। तो आज देखो हमारे जितना भाग्यवान है कोई इतना भाग्यशाली आत्मा कि हमारे सब बोझ जिम्मेवारियां लेने के लिए हमारा बाबा बैठा हुआ है। नहीं देते हैं तो भी बाबा कहते ठीक है बच्चे करो तुम, फिर बाद में तो तुम मेरे पास ही आएंगे, तुम्हें मेरी ही याद आएगी कि नहीं बाबा अब आप ही करो, मैं तो थक गया मैं तो भारी हो गया। इसलिए हमारी तपस्या क्या है, हमारी साधना क्या है, हमारी बाबा ने देखो आज कितनी सरल सिंपल जो आप दुनिया का देखो सुनो तपस्या के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और यहाँ बाबा ने ना हमें कोई व्रत करने के लिए कहा, ना उपवास करने के लिए कहा। सच्चा व्रत कौन सा, सच्चा उपवास कौन सा, वो भी बाबा ने सुना दिया। और बस एक ही पाठ पक्का करने के लिए हमारी तपस्या क्या है, कि तुम इस देह से न्यारी, शरीर से न्यारी, एक चैतन्य ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा हो, ये अभ्यास करो। और ये अभ्यास में मेरा ही फायदा है, कि सारे दिन की हमारी तपस्या क्या है, साधना क्या है, कि आंखों से सब कुछ करते, देखते, सुनते, बोलते, करते, कौन सा पाठ पक्का रखो, आत्मा का पाठ पक्का रखो। आत्मा को देखो, आत्मा से सुनो, आत्मा से बात करो। ये अभ्यास है हमारा, जिसमें हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करते आत्मा को देखने का अभ्यास करना है, जो हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा ने किया। आज हम दादियों के द्वारा सुनते हैं ना, कि बाबा ने संबंधों के बीच में रहते इतने बड़ा परिवार, ईश्वरीय परिवार, उसके बीच में रहते बाबा ने निज की साधना, निज की तपस्या आत्म अभिमानी बनने की, कि लिख लिख करके पाठ पक्का किया, कि जशोदा भी आत्मा, ये भी आत्मा, सबके लिए आत्मा, आत्मा का लिख करके भी अभ्यास पक्का किया। तो आज हम सब की भी साधना यही है, तपस्या यही है, कि हम आत्मा समझें, आत्मिक स्थिति बनाएं। क्योंकि बिना पहला पाठ, ए फॉर एप्पल, आ फॉर आत्मा का पाठ पक्का किए बगैर क्या होगा, हमारा योग बाबा से लग ही नहीं सकेगा। क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं तो झट तुरंत देह में दृष्टि जाती, देह की कमियों कमजोरियों में दृष्टि जाती, चाहे अच्छाइयों पर प्रभावित हो जाते, चाहे बुराइयां भी हमारे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये एक साधना कहो, तपस्या कहो, निज स्व की उन्नति का प्रथम पुरुषार्थ कहो, जो पहला भी है और आखिरी भी है। और अभी बाबा की मुरलियां जितनी चल रही उसमें भी रोज बाबा की, अगर देखें रोज की मुरली में कितनी बार आत्मा 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 का आता। और हम अपने से पूछें कि हम कितनी बार ये आत्मा का अभ्यास करते, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते। क्योंकि जब हमारा चलते फिरते उठते बैठते देखते आत्मा को देखने का अभ्यास होगा, तब ही जो बाबा कहते कि तुम्हारी अशरीरी स्थिति का अनुभव करो, अशरीरी होकर के बैठो, तब हम विशेष बैठ करके अभ्यास करते, तो हम शरीर से न्यारे होकर के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बैठ सकते। आज देह का हिसाब किताब, चाहे कर्म भोग का हिसाब किताब आता, उस समय भी दर्द की फीलिंग होती, उस समय भी जो आज कहते कि शरीर से न्यारे, अशरीरी हो जाओ, ये अभ्यास हमें मदद करता, पर हम नहीं कर पाते। आज हम सुनते बड़े बड़े महारथियों का कि आज देखो वो बिस्तर में, परंतु उनको दर्द की फीलिंग नहीं, ये नहीं। तो आज उन सबका इतना अभ्यास है कि शरीर में रहते शरीर से डिटैच रहने का, तो ये भी बहुत काल का अभ्यास होगा, तब ही चाहे कर्म भोग का, चाहे शरीर की दर्द का, चाहे जो भी हो, हम शरीर से न्यारे और शरीरी बनने का जितना अभ्यास होगा, तब हम उस समय में भी पास हो सकते हैं। इसलिए आज आप सब यहाँ पर आए हुए हैं, विशेष तपस्या मास चल रहा है। बार बार हमारी दादी जी क्लास में भी बोलती कि इस अभी यहाँ पर सब विशेष ये अभ्यास करें कि वाचा में कम आए और अपना जितना समय हो सके बाबा की यादों में समाये रहे। बहने भी लाती पार्टियों को, भाई बहन आते तो वहाँ भी ये पक्का कराते लाते कि अव्यक्त मास में मधुबन में जा रहे, जितना समय हो सके साधना तपस्या करें। अपने शहरों में अपने कारोबार में समय नहीं मिलता, यहाँ आकर के हमारे को समय मिला है, हम अपनी तपस्या करें। परंतु वो भी कब हो सकेगी, उसके लिए भी जितना हमारे को अंदर में यह एक लगन होगी कि नहीं मुझ आत्मा को तपस्वी मूर्त बनना है। बाबा इशारा दे रहा है, समय इशारा दे रहा है, और अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। क्योंकि जो समय है वो तो ना किसी के लिए रुका है और ना किसी के लिए रुकने वाला है। जो करना है मेरे को अब अभी करना है, ये वक्त जा रहा है। और जो हमारे को समय मिला है, जो थोड़ा बहुत समय मिला है, ये भी अभी हम कहेंगे ये भी हमारा भाग्य है, ये भी हमारा श्रेष्ठ अहो भाग्य है कि जो हमारे को अभी फिर भी थोड़ा समय मिल रहा है कि हम अपने समय को सफल भी कर लें और जो चाहे वो कर लें। क्योंकि देखो बाबा के इशारे सब देखते लगता कि वाकई में जो समय मिल रहा है अगर हमने अभी इसको सफल नहीं किया अपने पुरुषार्थ में सब करके, तो क्या पता आगे ये समय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भले कोई विनाश ना भी होना हो अभी एकदम से आज की तारीख में सब, परंतु क्या भरोसा कब किस घड़ी क्या हो जाए। आज हम सब सेंटरों में रहते सुनते रहते देखते रहते कि बहुत अच्छा आ रहे हैं सेंटरों में, क्लास में आ रहे, सुबह आ रहे, रेगुलर आ रहे, एक दिन मुरली मिस नहीं कर रहे हैं। परंतु अचानक चाहे घर परिवार में किसी की कोई ऐसी समस्या आ जाती, ऐसी बीमारी हो जाती, ऐसा ये कि चाहते हुए भी सेंटर में नहीं आ पाते और तब बड़ा तड़फते, तब बड़ा वो होते कि अरे हम बाबा के घर तो चले जाएं, कैसे भी करके जाएं, चाहे रोज नहीं जा पा रहे। परिस्थितियां ऐसा नहीं कि खुद जानबूझ के नहीं आना चाहते, पर कहां रेगुलर आ रहे और कहां ऐसे कारण परिस्थितियां बन जाती कि नहीं आ पाते। भले आज घर में पीस ऑफ माइंड चैनल लगा हुआ है, पीस ऑफ माइंड चैनल में मुरली भी सुन लेंगे, दिन भर उसको चैनल को लगाए रखेंगे, शाम को मंथन मुरली मंथन भी सुन लेंगे, पर फिर भी अंदर में एक प्यास बनी रहती, तड़फन कि हम बाबा के घर नहीं जा पा रहे, अपने ईश्वरीय परिवार से नहीं मिल पा रहे, अंदर में ये फिर बहुत हम देखते कि इतना तड़फती आत्माएं, इतना रोती कि हम आ नहीं पा रहे सेंटर में। तो इसलिए जो समय मिल रहा है, जो समय मिल रहा है आज, चाहे मधुबन में आने का भी चांस मौका मिला। कई बार हम भाई बहनों कहते कि अरे मौका मिला है ना मधुबन जाने का, तो छोड़ना नहीं चाहिए। मधुबन में भी बड़े भाग्य से ही पहुंच पाते हैं बाबा के घर में, नहीं तो कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता कि चलते चलते आते आते भी रुकावट आ जाती है और नहीं जा पाते। इसलिए जो समय मिल रहा, जो मौका मिल रहा आज प्यारे बाबा के घर में आने का, तो हम कहते उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस मौके का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। क्योंकि भले आज हम सेंटर में अपने घरों में भी सब देख लेंगे, प्यारे बाबा से मिलन भी मना लेंगे, परंतु मधुबन मधुबन है और घर में पीस ऑफ माइंड चैनल में बाबा से मिलन मनाएंगे, वो अपना अलग है। यहाँ भले इतनी भीड़ में कि किस कोने में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे कह नहीं सकते, पर वो सुख जो हमें यहाँ मिलेगा उस सुख का अनुभव हम वहाँ बैठे भी नहीं कर सकेंगे। आज सेंटर पे आकर के ईश्वरीय परिवार से मिलते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के घर में आकर के ये भी हमें चांस मिल रहा, समय मिल रहा, मौका मिल रहा है। घर में भले हम बैठ के पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, पर जो बाबा के घर में आके सेंटरों में आकर के बाबा के घर में आकर के मुरली सुनेंगे, चाहे कोई छोटी बहन ही मुरली सुनाएगी, पर बाबा के घर में आना वो एक कहो सूक्ष्म में बाबा की दुआ दृष्टि, सूक्ष्म में बाबा के आशीर्वाद हमारे को मिलता है। देखो सेंटर में बाबा के घर जाते सबसे पहले भाई बहन कहते हम 2 मिनट बाबा से मिल करके आ जाए, यही कहते ना, बस बाबा से मिल के आ जाए, कहीं जाना है बाबा से मिल के आ जाए, तो हमारी ये अंदर की भावना रहती। तो ऐसा नहीं है, बाबा भी फिर हमारे को अनुभव करा देता, बाबा भी हमारे से मिलता है, तभी तो अंदर में कितनी एक संतोष होता है, एक संतुष्टि मिलती कि हम बाबा से मिल करके आ गए, बाबा से छुट्टी लेकर के आ गए। तो इसलिए आज बाबा के घर का आकर के बैठना, मुरली सुनना, सेवाओं में किसी भी प्रकार से सहयोगी बनना, ये भी जो समय मिल रहा, जो चांस मौका मिल रहा उसको लेना चाहिए। आज देखो एक मुरली में बाबा ने कहा ब्राह्मणों की उन्नति का सबसे बड़ा साधन क्या है, आशीर्वाद, सबकी आशीर्वाद लेना। तो आज देखो हम बाबा के घर आते सुबह मिलते तो सूक्ष्म में हमारे को आशीर्वाद मिलती, बाबा की आशीर्वाद तो मिलती ही है, और साथ में आपस में हम मिलते जो खुश होते हैं। आज देखो सेंटर में चाहे बहनें रहती वो भी खुश होती कि चलो भाई आए आए हैं, क्योंकि बाबा ने अभी मुरली में कहा कि सब भगवान के घर के श्रृंगार हो, बाबा के श्रृंगार हो, भगवान के श्रृंगार हो, तो भगवान के घर के श्रृंगार हो। तो इसलिए सेंटर में आते सब खुश होते एक दो को, अरे आज वो भी आया, बहुत दिन बाद आया, अरे वाह ना नहीं रहे थे, आया करो। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म में हमारे को ईश्वरीय परिवार का आशीर्वाद मिलता है, बल मिलता है, दुआएं मिलती हैं जो आगे बढ़ने में हमारे को सहयोगी बनाती, योगी बनने में सहयोगी बनाती। इसलिए कहने का भाव ये है कि वर्तमान समय जो चल रहा है, जो हम सब परिस्थितियां देख रहे, सुन रहे, हालात जो हैं सबके सामने हैं, और इसलिए उसमें जो हमारे को समय मिल रहा है, जो हमारे को मौका मिल रहा है स्व की उन्नति के लिए, स्व की उन्नति में ही सब उन्नति समाई हुई है, तो उस समय को छोड़ना नहीं है, उस समय को गवाना नहीं है। जो बाबा कहते कि एक सेकंड भी संगम युग का एक सेकंड भी जो है वो बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है, ये तुम्हारा हर पल हर सेकंड जो है वो तुम्हारा कमाई का होना चाहिए। तो ये मेरे को अपने आप से, जो बाबा भी हमेशा कहते कि तुम्हारे पास में संकल्पों का भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ खजाना है, तो आज हमारे को समय का भी बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है। आज देखो हम सब समय के महत्व को भी समझते औरों को भी समय के महत्व के बताते हैं, तो आज हम सब को खुद से समय की वैल्यू होनी चाहिए कि ये समय जो आज मेरा मेरे को मिला है, जरूरी है कि ये कल मिल जाएगा, आज मिला है, अभी मिला है, इस समय को मेरे को अपने सफल करना है। जो बाबा कहते श्वासो श्वास तुम मुझे याद करो, हर श्वास तुम्हारा सफल हो, मेरा श्वास व्यर्थ ना जाए। तो मेरी तपस्या साधना क्या है कि हर पल हर सेकंड जो है वो मेरा सफल हो, व्यर्थ से मैं मुक्त रहूं। व्यर्थ से मुक्त में चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे व्यर्थ बोल हो, चाहे व्यर्थ देखना हो, हमारी तपस्या साधना क्या है, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, कर्म इंद्रियों के बंधन में मैं ना बंधू। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो कर्म इंद्रियों के आकर्षण से, कर्म इंद्रियों की परतंत्रता बंधन भी मेरे को ना रहे कि ये मेरे को नहीं देखना, तो भी मैं देख रही हूँ, मेरी नजर जा रही है, चाहे किसी की अवगुण के ऊपर, चाहे कमी कमजोरी के ऊपर, चाहे व्यर्थ का है, फिर भी अच्छा लग रहा, इच्छा नहीं है पर अच्छा लग रहा है, तो मैं देख भी ले रही हूँ, सुन भी ले रही हूँ, बोल भी ले रही हूँ, तो इन कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे। मीठे बाबा ने जो मेरे को कहा है उस अनुसार ही मेरा देखना भी है, मेरा बोलना भी है, मेरे को सुनना क्या है वो सुनना भी है, तो यही मेरा है कि अपने ऊपर में कंट्रोल। जो बाबा की देखिए अभी नए साल की जो 31 दिसंबर की मुरली, सिंपल सरल, पर बाबा ने उसमें भी लास्ट में मन के ऊपर कंट्रोल कि कंट्रोल किया, यही कंट्रोल है कि जो बाबा ने कहा है वो करना है, तो वही मेरी तपस्या कहो साधना कहो। तपस्या साधना क्या, जो मीठे बाबा की, जो मेरे बाबा की आज्ञा है, जो मेरे बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत को फॉलो करना, उस अनुसार मेरा करना, उस अनुसार मेरा चलना, उस अनुसार ही मेरा उठना बैठना, यही मेरी तपस्या है, यही मेरी साधना है। और बाबा हमेशा कहते कि अब वर्तमान समय आप अपने चलन से, चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो, वाणी के द्वारा तो करते ही हो, पर समय के अनुसार चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो। तो चलन चेहरा क्या, ये चेहरे में ये कर्म इंद्रियां ही है, तो इनके द्वारा मेरा जो है बाबा ने जो आज्ञा दी है, जो श्रीमत दी है, उस अनुसार अगर मेरा सब कुछ है, देखना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, वो तो क्या होगा कि बाबा की प्रत्यक्षता इस चलन मेरी चलन के द्वारा, चेहरे के द्वारा होगी ही सही, हुई ही पड़ी है। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो कि तपस्या मास में प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो सब अंदर में अपने आप से ये संकल्प करें, लक्ष्य रखें कि आज तो 16 तारीख हो गई, सबको इंतजार है कि परसों बाप दादा आएंगे, बाबा से मिलेंगे, तो अपने आप से ही जो कुछ करना है मेरे अंदर से ये होना चाहिए तो हम कर लेंगे। बाहर से तो कितना भी कोई बोलेगा करेगा उससे नहीं, पर अंदर से आना चाहिए कि अभी 2 दिन है हम मीठे बाबा के घर में, बाबा आएंगे, बाबा से मिलेंगे, पर 2 दिन 17-18 आज भी है सही कि हम पूरा बाबा समान, बाबा ने कितना अपने आप की, निज की साधना तपस्या की, तो मेरे को भी जितना हो सके आवाज में सूक्ष्म बोलना भी है, सूक्ष्म आते हुए अपना इन आत्म चिंतन करना है, आत्म विश्लेषण करना है और पूरा अपने समय को सफल करते हुए बाप दादा से मिलन मनाते हुए अपने को वरदानों से शक्तियों से भरपूर करना है, जो कि जब मैं अपने स्थान पर भी जाऊं तो एक नई ऊर्जा एक नई शक्ति लेकर के एक नया रूप लेकर के जाऊं, जो कि बोलूं कुछ भी नहीं किंतु मेरे से ये वाइब्रेशन मेरे समीप वाले सबको आए कि नहीं मधुबन से प्यारे बाबा के घर से आए हैं, तो इनमें एक अलग ही कुछ नयापन दिखाई दे रहा, क्योंकि 18 जनवरी तपस्या मास अव्यक्त मास तो है पर ये परिवर्तन का भी मास है। अगर मैं अपने आप से दृढ़ संकल्प करती हूँ, दृढ़ संकल्प करता हूँ तो मीठे बाबा का वरदान मिल जाता है और वो वरदान ही जो है मेरे को मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। ओम शांति।